नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवली निकम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर इसराइल रवाना हुए। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच स्थायी संबंध और मजबूत होंगे। भारत और इसराइल ने सीमा पार आतंकवाद सहित इसके सभी प्रारूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस और यूक्रेन के बीच बिना शर्त युद्ध विराम का आह्वान करने वाले प्रस्ताव पर भारत ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका वर्तमान में पहले से कहीं अधिक समृद्ध और मजबूत है। और इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 2 विकेट से हराकर T20 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की राजकीय यात्रा पर इसराइल रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने रवाना होने से पहले अपने प्रस्थान वक्तव्य में आशा व्यक्त की है कि इसराइल की उनकी 2 दिन की राजकीय यात्रा से दोनों देशों के बीच स्थायी संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि यात्रा रणनीतिक और साझेदारी के लिए नए लक्ष्य निर्धारित करेगी और दोनों देशों के लिए एक लचीले, नवोन्मेषी और समृद्ध भविष्य की साझा दृष्टि को आगे बढ़ाएगी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इसराइल के बीच एक मजबूत बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी है जिसने हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि और गतिशीलता देखी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। श्री मोदी की ये दूसरी इसराइल यात्रा है। इस दौरान वे इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ बैठक करेंगे जिसमें भारत इसराइल रणनीतिक साझेदारी में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा तथा सुरक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, व्यापार और अर्थव्यवस्था तथा दोनों देशों के लोगों के बीच आदान प्रदान सहित कई क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों पर बातचीत करेंगे। श्री मोदी कल इसराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग से भी मुलाकात करेंगे। और अब चलते हैं यरूशलम में प्रधानमंत्री की यात्रा को कवर कर रहे हमारे विशेष संवाददाता धीरज काकड़िया के पास। जी धीरज, प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर आपके पास क्या ताजा जानकारी है और आज उनके क्या क्या कार्यक्रम प्रस्तावित हैं?
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारतीय समय के अनुसार करीब 4:15 बजे इसराइल की राजधानी तेल अवीव पहुंचेंगे। हवाई अड्डे पर यहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उनका गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। उसके बाद दोनों नेताओं के बीच निजी बातचीत होगी। दोनों ही नेता डिप्लोमेसी को पर्सनल टच देने के लिए जाने जाते हैं। आरंभिक स्वागत के बाद दोनों ही नेता यरूशलेम जाएंगे। 2 दिन के दौरे के सारे ही प्रोग्राम बाकी के यरूशलेम में ही निर्धारित है। भारतीय मूल के करीब 85,000 यहूदी जो 1948 में इसराइल स्टेट बनने के बाद यहाँ स्थानांतरित हुए थे, सारे ही लोग प्रधानमंत्री को इसराइल में देखने के लिए बहुत उत्साहित थे। आज दिन में कम्युनिटी इवेंट के अलावा जो एक प्रोग्राम है वो टेक एग्जीबिशन का प्रोग्राम है। इसराइल की जो टॉप टेक्नोलॉजीज है उनका एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रधानमंत्री के लिए रखा गया है। ये प्रोग्राम्स के बाद सारे ही प्रोग्राम्स, खास करके जिसमें सहमति के समझौते होने वाले हैं, वो कल के लिए रखे हैं। लवलिन
अजीत धीरज, प्रधानमंत्री इसराइल की संसद को भी संबोधित करेंगे, इसके बारे में भी बताएं।
आज जो मुख्य प्रोग्राम है वो यहाँ की संसद, जिसको कनेसेट कहा जाता है, उसको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संबोधन का है। इसराइल की संसद यानी कनेसेट एक सदनीय विधायिका है। कनेसेट में 120 सदस्य होते हैं जो लोग आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के माध्यम से चुने जाते हैं और दलों को प्राप्त मतों के प्रतिशत के आधार पर सीटें आवंटित की जाती है। प्रधानमंत्री का जो संबोधन होने वाला है उसको लेकर पूरे ही इसराइल में उत्साह है और इन दिनों में भारतीय दृष्टिकोण को, खास करके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को, इसराइल में बहुत ही महत्व दिया जाता है। लवलिन
धन्यवाद इस जानकारी के लिए। भारत और इसराइल ने आतंकवाद और आतंकी संगठनों, उनके समर्थकों, प्रायोजकों, वित्त पोषकों और मददगारों से निपटने में सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। कल नई दिल्ली में आयोजित भारत इसराइल संयुक्त कार्य समूह JWG की आतंकरोधी 10वीं बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने सभी तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की और इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए लगातार व्यापक और समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है। एक रिपोर्ट।
इस बैठक में भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया गया। दोनों देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों से संयुक्त रूप से लड़ने की अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों पक्षों ने इसराइल में 7 अक्टूबर 2023 को हुए आतंकी हमले और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के साथ अन्य हालिया हमलों की भी निंदा की। उन्होंने आतंकवादी भर्ती, प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग, आतंकवाद वित्त पोषण और आतंकी गतिविधियों के लिए मानव रहित हवाई वाहनों, ड्रोन और एआई के बढ़ते उपयोग जैसे उभरते खतरों पर चर्चा की। दोनों पक्ष प्रशिक्षण, साइबर सुरक्षा, सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान और सूचना साझाकरण के साथ साथ कानून प्रवर्तन और न्यायिक समन्वय को बढ़ाकर सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए। दोनों पक्षों ने आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह की अगली बैठक इसराइल में आयोजित करने का निर्णय लिया। दिलनशी आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
कनाडा सरकार ने मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर हुसैन राणा की नागरिकता समाप्त करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कल से शुरू हो रही भारत यात्रा से पहले ये कदम उठाया है। कनाडा भारत के साथ आपसी संबंधों में सुधार करना चाहता है। पाकिस्तान मूल के कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा इस समय भारत की हिरासत में हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस और यूक्रेन के बीच तत्काल, पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम के आह्वान पर प्रस्ताव पारित कर दिया है। 193 सदस्यीय महासभा में 107 देशों ने मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में और 12 सदस्यों ने विरोध में मतदान किया। भारत, बहरीन, बांग्लादेश, ब्राजील, चीन, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात और अमरीका सहित 51 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। ये प्रस्ताव यूक्रेन की ओर से प्रस्तुत किया गया था। प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र चार्टर सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप व्यापक, न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के आह्वान को दोहराया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका वर्तमान में पहले से कहीं अधिक समृद्ध और मजबूत है। राष्ट्रपति ने के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान आज सुबह विभाजित संसद को संबोधित करते हुए श्री ट्रंप ने कहा कि अपने नेतृत्व में हुए व्यापक राष्ट्रीय परिवर्तन का भी उल्लेख किया। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा नियंत्रण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने दावा किया कि उनके प्रशासन ने अमरीका के इतिहास में सबसे सुरक्षित सीमा स्थापित की है और पिछले 9 महीने में कोई भी अवैध प्रवेश नहीं हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच राजनयिक वार्ता का तीसरा दौर कल जेनेवा में शुरू होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि यदि कूटनीति को प्राथमिकता दी जाए तो एक अभूतपूर्व समझौता संभव है। एक रिपोर्ट।
जनवरी 2026 में देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक कार्रवाई के बाद ईरान की सरकार को अंतर्राष्ट्रीय जांच का सामना करना पड़ रहा है। मानवाधिकार समूहों की रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक कठिनाई और राजनीतिक परिवर्तन की मांगों से भड़के इस अशांति के दौरान लगभग 7,000 लोग मारे गए और हजारों लोगों को हिरासत में ले लिया गया। ईरान पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने 2003 के बाद से मध्य पूर्व में अपनी सबसे बड़ी सैन्य उपस्थिति दर्ज की है। इस बेड़े में 2 विमानवाहक पोत स्ट्राइक समूह USS अब्राहम लिंकन और USS गेराल्ड आर फोर्ड शामिल है। मुख्य विवाद ईरान के यूरेनियम संवर्धन को लेकर है, जिस पर अमेरिका का कहना है कि ये हथियार ग्रेड स्तर तक नहीं पहुंचने चाहिए। हालांकि दोनों पक्ष शांतिपूर्ण समाधान की इच्छा व्यक्त करते रहे हैं, वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर कूटनीति ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकने में विफल रहती है तो सैन्य विकल्प अभी भी खुले रहेंगे। विश्व दर्पण के लिए आनंद पाठ।
अबू धाबी स्थित हिदिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ने मकसूद क्रूज को अपने अंतर्राष्ट्रीय संचालन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे हिंसक उग्रवाद का मुकाबला करने वाली इस संस्था के दिशा निर्देशों का नेतृत्व करेंगे। T20 क्रिकेट विश्व कप में कल रात सुपर 8 के मुकाबले में इंग्लैंड पाकिस्तान को 2 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। श्रीलंका के पल्लेकेले में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने 165 रन के लक्ष्य को 8 विकेट पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। आज सुपर 8 मुकाबले में न्यूजीलैंड का सामना श्रीलंका से होगा। ये मैच कोलंबो स्थित प्रेमदासा स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर इसराइल रवाना हुए। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच स्थायी संबंध और मजबूत होंगे। भारत और इसराइल ने सीमा पार आतंकवाद सहित इसके सभी प्रारूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस और यूक्रेन के बीच बिना शर्त युद्ध विराम का आह्वान करने वाले प्रस्ताव पर भारत ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका वर्तमान में पहले से कहीं अधिक समृद्ध और मजबूत है और इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 2 विकेट से हराकर T20 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।